अध्याय 27 सारांश लेखन परिभाषा और उद्देश्य। शब्द जाल से अलग होकर सीधे साधे शब्दों में अपने भाव को व्यक्त करने की कला का नाम सारांश है। सारांश लेखन के समय यह आवश्यक नहीं कि सभी भावों में एक साथ तारतम्य हो। सारांश में तथ्यों की व्यवस्था और तारतम्य पर बल नहीं दिया जाता है, जबकि सार लेखन कला ठीक इसके विपरीत अनुशासन को धारण करती है। लेकिन सारांश को पढ़कर यह ज्ञात न हो कि इससे किसी बात की कमी है। सारांश लेखन के लिए आवश्यक तत्व। शीर्षक चयन। अवतरण को 2-4 बार ध्यान में पढ़ना चाहिए, फिर सोचना चाहिए कि अवतरण में कौन सा भाव या विचार बार बार टकरा रहा है, वही आपके अवतरण का शीर्षक है। शीर्षक लिखते समय कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात शीर्षक छोटा से छोटा हो। आकार में संक्षिप्तता। सारांश लेखन के समय यह ध्यान देना चाहिए कि इसमें वाक्य का गठन ठोस हो, अनावश्यक शब्द आडंबरों से दूर रहना चाहिए। उदाहरणों, कहावतों, दृष्टांतों, व्याख्याओं, विशेषणों, क्रिया विशेषणों, अलंकारों आदि का समावेश नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ दीर्घ शब्दावली को वहाँ वहाँ सामाजिक चिन्ह का प्रयोग लघु रूप देना चाहिए, किंतु कहीं से ऐसा भी ना लगे कि मूल अवतरण में कोई आवश्यक तथ्य छूटा है। सारांश आकार में मूल पाठ का 1/3 या 1/4 होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्पष्टता। मूल अवतरण का सारांश लेखन इस ढंग से तैयार किया जाए कि इसे पढ़ने में लगे कि मूलांश का निचोड़ सारांश में है। बिना मूल अवतरण पढ़े यह समझे स्पष्ट हो जाए कि क्या भाव है। चूंकि सारांश लेखक को मूल अवतरण का भाव अपने शब्दों में लिखना पड़ता है, इसलिए इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि सारांश लिखते समय भाव सुस्पष्ट हो रहे। इसे अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। संवादों को संवाद रूप में न लिखकर अपनी भाषा में ही लिखना चाहिए। भाषा शैली की सहजता। सारांश लेखन के समय भाषा शैली सरल, सरस, सहज, स्पष्ट होनी चाहिए। अलंकारों, मुहावरों, उदाहरणों आदि के प्रयोग से बचना चाहिए। भाषा शैली पर एक समुचित दृष्टि पड़ते ही यह स्पष्ट हो जाए कि सारांश लेखन क्या कहना चाहता है। भाषा शैली परिमार्जित हो, भाषा में स्वाभाविक प्रभाव हो। प्रवाह को अनवरत बनाए रखने के लिए जैसा कि हालांकि फिर भी यद्यपि तथापि वस्तु दर असल अतः एतव यहाँ तक कि इत्यादि शब्दों का प्रयोग किए जा सकते हैं। क्रमबद्धता। सारांश के भाव की क्रमबद्धता आवश्यक है। हाँ, सारांश के भावों का उस क्रम में अपनाना कोई अनिवार्य अनुशासन नहीं जिस क्रम में मूल अवतरण आए हों। बेशक सारांश लेखक अपने चतुर सूझबूझ से उनमें वांछित परिवर्तन कर सकता है, किंतु इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जिस किसी विचार अथवा भाव की अभिव्यक्ति हो उसे तार्किक क्रमबद्धता हो, अन्यथा पूरा का पूरा सारांश स्थायी बनकर रह जाएगा। अनुच्छेद व्यवस्था। सारांश लेखन के समय आवश्यकता अनुसार अनुच्छेदों की व्यवस्था होनी चाहिए। एक अनुच्छेद के अंतर्गत एक ही भाव की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, अर्थात एक अनुच्छेद के अंतर्गत एक ही मूल भाव लिखना चाहिए। परीक्षा उपयोगी सारांश लेखन। निम्नलिखित उद्धरणों का सारांश अपने शब्दों में लिखिए और काले अंशों को सरल हिंदी में समझाइए। परीक्षा उपयोगी सारांश लेखन। निम्नलिखित उद्धरणों का सारांश अपने शब्दों में लिखिए और काले अंशों को सरल हिंदी में समझाइए। समस्त संसार के भिन्न भिन्न राष्ट्रों और जातियों के इतिहास को देखने से मालूम हो जाता है कि राष्ट्रीयता का भाषा और साहित्य के साथ बहुत ही घनिष्ठ और गहरा संबंध है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि राष्ट्रीयता और जातीयता के अंगों में सबसे अधिक आवश्यक अंग एकता है, और वह एकता किसी विषय विशेष में नहीं। वह एकता जितनी व्यापक होगी उतनी ही राष्ट्रीयता में स्थिरता होगी और वह शक्तिशाली होगी। भावों की एकता अन्य सब प्रकार की एकताओं का मूल है, और यह भावों की एकता तभी हो सकती है जब वे विभिन्न व्यक्तियों जिनके द्वारा राष्ट्रीयता का निर्माण होता है अपने भावों को एक दूसरे का व्यक्त कर सकें। इस महान कार्य के लिए भाषा की अत्यंत आवश्यकता है। साहित्य क्या है? साहित्य मानव जाति के उच्च से उच्च और सुंदर से सुंदर विचारों और भावों का गुच्छ है जिसकी बाहरी सुंदरता और भीतरी सुगंधि दोनों ही मन को मोह लेते हैं। कोई जाति तब तक बड़ी नहीं हो सकती जब तक कि उसके भाव और विचार उन्नत ना हो। जब भाव और विचार उन्नत होंगे तब उनका विकास उस जाति के साहित्य के रूप में ही हो सकता है। इसलिए जाति या राष्ट्र के उत्थान के साथ साथ उस जाति या राष्ट्र के साहित्य का भी उत्थान होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार साहित्य की अवनति उस जाति के पतन का अटल और अटूट प्रमाण है। भारत के इतिहास को ही लीजिए। महाभारत, रामायण और उपनिषद अवश्य ऐसे समय में लिखे गए थे जब यह देश बहुत उन्नत था। यह कल्पना असंभव तो नहीं, दुष्कर अवश्य है कि ऐसे ग्रंथ रत्न किसी असभ्य बर्बर जाति के आचार्यों द्वारा लिखे गए हों। जब बौद्धों का राज्य भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गया था और उनका प्रभुत्व तथा गौरव भारतवर्ष के बाहर भी पहुंच गया था तो पाली भाषी और पाली साहित्य की उन्नति भी साम्राज्य की उन्नति के साथ ही साथ बढ़ती गई। सारांश: राष्ट्रीयता का भाषा और साहित्य में घनिष्ठ संबंध है। राष्ट्रीयता और जातीयता की आधार भूमि एकता है जिसकी अभिव्यक्ति भाषा और साहित्य के माध्यम से ही संभव है। भाषा की अनिवार्यता इसलिए भी है कि व्यक्ति परस्पर अपने भावों का प्रकाशन इसी अवलंब से करते हैं। इसी प्रकार साहित्य भी सुंदर भावों और विचारों का समुच्चय है। इसलिए जाति या राष्ट्र की समुन्नति सुंदर भावों और विचारों के परिवेश में पनपने वाले उत्थान अथवा पतन निहित है। भारतीय इतिहास के अतीत और वर्तमान से इस आशय के अभिप्रेत उदाहरण दिए जा सकते हैं। महाभारत, रामायण तथा उपनिषद कालीन सभ्यता और बौद्ध कालीन सभ्यता में जो है वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। कालांकित अंशों के स्पष्टीकरण: पहला, राष्ट्रीयता का भाषा और साहित्य के साथ बहुत बड़ा घनिष्ठ और गहरा संबंध है। देश की समग्रता और एकाग्रता को सूचित करने वाले भाव का नाम राष्ट्रीयता है। यह राष्ट्रीयता भाषा और साहित्य जिसमें विचार विनिमय और भाव संपदा का संरक्षण होता है पर निर्भर है। दूसरा, राष्ट्रीयता और जनजातीयता के अंगों में सबसे अधिक आवश्यक अंग एकता है। राष्ट्रीयता और जातीयता के निमित्त जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है उनमें एकता का स्थान महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके द्वारा समस्त जाति और देश के लोग परस्पर सहयोग और सद्भाव के संकलित होते हैं। तीसरा, विषय विशेष, एक विशेष विषय। चौथा, व्यापक स्वरगामी विस्तृत अधिकाधिक विषयों से। पांचवा, स्थिरता दृढ़ता अचलता स्थायित्व। छठवां, भावों की एकता अन्य सब प्रकार की एकताओं का मूल है। भावों की एकता पर ही अन्य एकताएं निर्भर है क्योंकि भावों की एकता मनुष्य को भीतर से एक करती है जिसका प्रभाव बाहर भी पड़ता है। सातवां, अपने भावों को एक दूसरे पर व्यक्त कर सके, अपने भावों को एक दूसरे पर प्रकट कर सके, भावों और विचारों का परस्पर आदान प्रदान हो सके। आठवां, विचारों और भावों का गुच्छ है, विचारों तथा भावों का चयनात्मक समुच्चय है। नौवां, इसी प्रकार साहित्य की अवनति उस जाति के पतन का अटल और अटूट प्रमाण है। साहित्य की अवनति किसी जाति अथवा देश के पतित होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। ललित कलाओं की भांति साहित्य स्त्रता भी चैतन्य मनुष्य है। यह संसार असंख्य जीवधारियों की निवास भूमि है। हमारे साहित्य कहते हैं कि प्रत्येक जीव आत्मान है। आत्मा अपने निर्विकल्प रूप में प्रयत आत्मान है। ज्ञान, इच्छा और क्रिया ये आत्मा की तीन वृत्तियां मानी जाती हैं। जिस प्रकार प्रत्येक जीवन आत्ममान है उसी प्रकार प्रत्येक अनात्म की है। सांख्य में भी इसे ही मूल प्रकृति कहा है। आत्म और अनात्म के सम्मिश्रण से ही जीवन मात्र की रचना हुई है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी को जड़ चेतन की ग्रंथि कहकर अपना प्रसिद्ध रूपक बांधा है। संसार का समरण इसी सम्मिश्रण का रूप है। प्रतिज्ञात्मकता और मूल प्रकृति आत्म और अनात्म दोनों ही परमात्मा में है जिनकी लीला का यह संसार हमारी आंखों के सामने फैला हुआ है। जितने जीवधारी हैं सब में आत्मभाव और अनात्म भाव भिन्न भिन्न मात्राओं में व्याप्त होता है। इसलिए जीवों के गणित रूप हैं, एक परमात्मा का यह अनगिनत रूप में एको बहुआर्यम के श्रुति वाक्य में सिद्ध होता है। किसी जीव में आत्मबल प्रबल है, किसी में अनात्म भाव प्रबल है। इसलिए हम बहुधा किसी राष्ट्र को सत्यनुमुख और किसी को असत्यनुमुख कहते हैं। संसार में कभी सतयुग कभी कलयुग का प्रवेश बतलाते हैं, और कभी समिष्ट चक्र में कभी आत्मा तथा कभी अनात्मा की अधिकता पाते हैं। मूल में पहुंचने पर हम प्रत्येक जीव के आत्मभाव और अनात्म भाव का दर्शन करते हैं, जिनके संयोग में यह बहुरूपी संसार भास रहा है। सारांश: अन्य ललित कलाओं की भांति साहित्यकार भी चैतन्य मनुष्य है। अन्य जीवों की भांति मनुष्य में भी आत्मा और अनात्मा का सम्मिश्रण है। आत्म चेतन और अनात्म जड़ का प्रतीक है। आत्म और अनात्म के सम्मिश्रण से ही इस संसार की सृष्टि संभव हुई है। इसी को परमात्मा की लीला कहा गया है, क्योंकि परमात्मा में इन दोनों का अंतर्भाव है। संसार के विविध रूपों में परमात्मा की सत्ता है। जिस रूप में आत्मा का आधिक्य है वह सत्योन्मुख है, और जिसमें अनात्मा का अधिकता है वह असत्योन्मुख है। अंशों के स्पष्टीकरण: साहित्य की श्रेष्ठता भी चैतन्य मनुष्य है। साहित्य की रचना करने वाला मनुष्य एक विवेकशील और बौद्धिक दृष्टि से जागरूक प्राणी है। हर जीवधारी साहित्य रचना का दावा नहीं कर सकता। उसके लिए विकास की श्रृंखला में मनुष्य की कोटि को पहुंचा हुआ प्राणी ही अपेक्षित है। दूसरा, ज्ञान, इच्छा और क्रिया ये आत्मा की तीन वृत्तियां मानी गई हैं। हर आत्मवान प्राणी में तीन गुण होते हैं। ज्ञानवान होता है, अर्थात उसे वस्तुओं की पहचान होती है। उसमें इच्छा शक्ति होती है, अर्थात वह कुछ वस्तुओं के प्रति स्पृहा रखता है और कुछ के प्रति नहीं। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वह कार्यशील रहता है। तीसरा, एक परमात्मा का यह अगणित रूप में एको बहु श्याम के श्रुति वाक्य से सिद्ध होता है। संसार की विविध वस्तुएं जो असंख्य चराचर के रूप में दिखाई देती हैं, परमात्मा की ही प्रतिछाया है। वेदों में कथित यह वाक्य सत्य की एक परमात्मा ही अपनी लीला रूपी सृष्टि की रचना हेतु अनेक रूपों में अपने को प्रतिभाषित करता है। चौथा, इसलिए हम बहुधा राष्ट्र को राष्ट्र का सत्यनुमुख और किसी को असत्यनुमुख कहते हैं। जिस राष्ट्र के नागरिकों में आत्म तत्व की प्रधानता होती है उसे सत्योन्मुख राष्ट्र कहा जाता है, और जिस राष्ट्र के नागरिक अनात्मता जड़ता के वशीभूत होते हैं उन्हें असत्योन्मुख कहा जाता है। पांचवा, मूल के पहुंचने पर हम प्रत्येक जीवन में आत्मभाव और अनात्मभाव का दर्शन करते हैं, जिनके संयोग से यह बहुरूपी संसार भास रहा है। यो तो समस्त सृष्टि में कहीं आत्मा की कहीं अनात्मा की अधिकता पाई जाती है, पर सृष्टि में कोई भी जीवधारी ऐसा नहीं जिसमें इन दोनों तत्वों में किसी एक का वर्णन सर्वथा अभाव हो। सृष्टि के मूल में इन दोनों की विद्यमानता अनिवार्य है। किसी एक का सर्वथा अभाव होने से सृष्टि ही असंभव हो जाएगी। अभ्यास के लिए अवतरण: निम्नलिखित अवतरण का शीर्षक बताइए और 4-5 वाक्यों में उसका सारांश लिखिए। ईश्वर भी सानानुकूल और सहायक उन्हीं को होता है जो अपनी सहायता आप कर सकते हैं। अपने आप अपनी सहायता करने की वासना आदमी में सच्ची तरक्की की बुनियाद है। अपने सुप्रसिद्ध पुरुषों की जीवनी इसके उदाहरण है। वरन प्रत्येक जाति के लोगों में बल और ओज तथा गौरव और महत्व आने का आत्मनिर्भरता सच्चा द्वार है। बहुधा देखने में आता है कि किसी काम के करने में बाहरी सहायता इतना लाभ नहीं पहुंचा सकती जितना आत्मनिर्भरता। समाज के बंधन में भी देखेंगे तो बहुत तरह के संशोधन सरकारी कानूनों द्वारा वैसे नहीं हो सकते जैसे समाज के एक एक मनुष्य का अपना संशोधन अपने आप अलग अलग करने से हो सकता है। कूड़े से कूड़ा कानून आलसी समाज के परिश्रमित अपव्ययी या फिजूल खर्च को किफायतीदार या परिमित व्ययशील, शराबी को परहेजगार, क्रोधी को शांत या सहनशील, सूम को उदार, लोभी को संतोषी, मूर्ख को विद्वान, दर्पान धन को नर्म, दुराचारी को सदाचारी, कदर्भ को उन्नतमंता, दरिद्र को भिखारी, धनढ्य, भीरु, दर्पोक और वीर धुरिन, झूठे गपोरियों को सच्चा, चोर को साह, व्यभिचारी को एक प्रतिनिवर्ता इत्यादि बना सकता है। किंतु ये बातें हम अपने ही प्रयत्न और चेष्टा से अपने में ला सकते हैं। निम्नलिखित अवतरण का शीर्षक लिखिए और उनका सारांश 5-6 वाक्यों में प्रस्तुत कीजिए। हमारे त्यौहार क्या हैं? अनादि काल से अनंत काल तक प्रवाहमान जीवन यात्रा के बीच मिलने वाले छायादार वृक्ष हैं। इस दिन अनंत पथ का यात्रा मानव समाज में अपने जीवन और एक श्रम में थक कर इन त्योहारों के नीचे प्रभाव डालता आता है। इस दिन काम काज की जगह दुख सुख की बात पूछी जाती है और कठोर भाषा की जगह गीत की सुमधुर गुनगुनाहट ले लेती है। ये त्यौहार मनुष्य को अपने सामाजिक होने की याद दिला जाते हैं। जीवन में ये त्यौहार क्यों आते हैं? चारों ओर स्नेह और आनंद की लहर सी आ जाती है। इंसान का मन यह महसूस करता है कि जब तक वह झुकेगा नहीं, खाली घड़े की तरह ऊपर ही तैरता रहेगा। आशीर्वाद रूपी निर्मल जल पाने के लिए तो किसी के चरणों में श्रद्धा से विनत होना ही होगा। निम्नलिखित सारांश का लगभग 200 शब्दों में प्रयोजन हेतु विशेष रूप दिए गए कागज पर लिखिए। जिस प्रकार देश प्रेम और राष्ट्रीयता का आत्मस्वरूप एक ही है, उसी प्रकार विश्व प्रेम और अंतर्राष्ट्रीयता में एक भावना काम करती है। अंतर्राष्ट्रीयता से दूर हटकर हम राष्ट्रीयता को पवित्र नहीं रख सकते। हमारा उद्देश्य सदा ही उच्च होना है। जहाँ राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग की भावना रखते हैं, वहाँ अन्य राष्ट्रों के लिए कम से कम मंगल कामना की गुंजाइश तो रखे ही। मानवता का विकास हृदय विकास से ही संभव है। यही कारण है कि भारत आदिकाल से ही अपनी राष्ट्रीयता के साथ अन्य देशों की राष्ट्रीयता का भी सम्मान देता रहा है। भारत का विश्व बंधुत्व भाव ऐतिहासिक महत्व रखता है। भारत के इतिहास में ऐसी घटनाओं का सर्वथा अभाव है जिनसे यह सिद्ध किया जा सके कि भारत ने किसी समोपस्त किंवा दुरस्त राष्ट्र पर आक्रमण किया हो। कभी संघर्ष का अवसर आया भी हो तो वह संघर्ष तक ही सीमित रहा। आक्रांत देश की राष्ट्रीयता का हनन भारतीयों के द्वारा नहीं हुआ। सच तो यह है कि भारत की राजनीति में भी अध्यात्म भावना प्रबल रही है। अध्यात्म भावना से पृथक होकर राजनीति अपनी पवित्रता स्थिर नहीं रख सकती। बहुत दिनों के बाद भारत अभी अभी स्वतंत्रता का श्वास ले चुका है। स्वतंत्र होने के साथ ही भारत अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार सोचने को बाध्य हुआ और उसने अपनी तटस्थ तथा गुटनिरपेक्ष नीति की घोषणा की। दुख की बात यह है कि आज के भूमंडल के अधिकांश राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीयता की भावना से दूर है। पल पल सुलगने वाली महामार की ज्वाला यह स्पष्ट कर रही है कि स्वार्थ को ओट में अंतर्राष्ट्रीयता का आघात होता है आया है। युद्ध के भय से संपूर्ण विश्व का वातावरण विषाक्त करने का प्रयास चलता रहा है तो कभी हाइड्रोजन बम का सहारा लेकर शक्तिहीन राष्ट्रों को भयग्रस्त करने का प्रयास चलता है तो कभी नाइट्रोजन बम का उद्घोष सुन शक्तिशालियों का हृदय कंपित होता है। आवश्यक है कि आज प्रत्येक राष्ट्र जिसे अपनी राष्ट्रीयता प्यारी है, अंतर्राष्ट्रीयता को महत्व देते हुए घातक प्रयासों के विरुद्ध आवाज उठाए। यदि कोई राष्ट्र अपने ढंग से स्वयं को समृद्ध बनाता है तो किसी राष्ट्र को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह अपनी नीति को भार उस पर लादने का प्रयत्न करे। हम अपने पड़ोसी का घोड़े पर चलना पसंद नहीं कर सकते। कब संभव है कि उसे हमारा मोटर पर चलना पसंद ना आए? निम्नलिखित अवतरणों का सारांश अपने शब्दों में लिखिए और कालांकित अंशों का सरल हिंदी में समझाइए। इस युग में पुस्तकों के महत्व में कौन परिचित नहीं? पुस्तकें सरस्वती का वरदान है। ज्ञान विज्ञान की अश्रु निधि इन्हीं के कलेवर में बंद रहती हैं। हमारे पूर्वजों की संचित ज्ञान राशि उन्हीं के माध्यम से हम तक पहुंचती है। पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं जो दुखी में हमें ढांढस बनाती हैं और सुख में हमें हर्षित करती हैं। उनके इसी महत्व को लक्षित करने के लिए तो ऑस्टिन फिलिप्स ने कहा था, पुराने कपड़े पहनकर भी नई किताबें खरीदिए। सर्वसाधारण भारतीय तो नई पुस्तकें खरीदने के शौकीन ना होते हैं। हाँ, विद्यार्थी समाज को अपने पाठ्यक्रम निर्धारित पुस्तकें अवश्य खरीदनी पड़ती हैं, किंतु खेद का विषय है कि हमारे आज के विद्यार्थियों को अपनी पुस्तकें संभाल कर रखना नहीं आता। कक्षा में पढ़ने के लिए जब कभी विद्यार्थियों से पुस्तकें ली जाती हैं तब किसी के पन्ने नदारत, कोई मैली कुचली है तो किसी पर ज्यामिति की नानविध आकृतियों की भरमार। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को रेखांकित कर हाशिए पर उनके अर्थ लिखने की बुरी आदत से तो आजकल के लगभग सभी विद्यार्थी ग्रस्त प्रतीत होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है हमारी सही संगी साथियों की तरह हमारी पुस्तकें भी हमारे चरित्र का घोतक हो सकती हैं? आप मुझे अपनी पुस्तकें दिखाएं, उनकी दशा देखकर ही बहुत हद तक आपके चारित्रिक गुणों का ही अनुमान लगा लूंगा, क्योंकि जो विद्यार्थी लापरवाह होते हैं उनकी पुस्तकें भी उनके इस दुर्गुण का शिकार हो जाती हैं और अपना गला फार फार कर इस बात का ढिंढोरा पीटती हैं। पुस्तकों पर पेंसिल और पेन का खुला प्रयोग उनके स्वामी के फुहरपन और आराम मतलबी का प्रतीक है और उनका फटा पुराना होना उनका चारित्रिक शिथिलता का परिचायक है। पुस्तकें पुस्तिकाओं से पन्ने फाड़ने वाले विद्यार्थी निश्चित रूप से अपने उत्तरदायित्वहीनता का परिचय देता है तथा अपनी पाठ्य पुस्तक सामग्री को प्राय खोजने वाला छात्र जीवन के उस अवसरों का सदुपयोग करने में असफल रहता है। इसी तरह पुस्तकों में जगह जगह नाम लिखने से तबीयत के हल्केपन का पता चलता है। कतिपय उच्च कक्षाओं के छात्र जो अनजाने में पुस्तक गंदी करते देखा गया है, ऐसे विद्यार्थी गंभीर विषय पढ़ते समय एक पेंसिल हाथ में रखते हैं और महत्वपूर्ण स्थलों को रेखांकित कर चले जाते हैं। पूछने पर प्राय यह उत्तर मिलता है कि इस तरह विषय हृदय अंकित करने में सहायता मिलती है, मानो वे स्थलों को रेखांकित नहीं हृदय अंकित करते हों। और दूसरे यह इस तरह चिन्हित अंशों को पुनरावृत्ति भी उनके लिए सहज हो जाती है। इस विषय में हमारा मत यह है कि प्रथम तो अध्ययन जैसे उत्तरावृत्ति में इस प्रकार के हीन अवलंबों की दास्ता ही श्रेयस्कर नहीं, क्योंकि इससे विस्तृत अध्ययन की गति अवरुद्ध हो जाती है, तथा दूसरे वह विधि जब अपनाई जा सकती है जब पुस्तकें निजी पुस्तकालयों अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त की ना गई हों। पढ़ते पढ़ते बीच में ही किसी कारणवश उठना पड़े तो विद्यार्थी प्राय स्मृति चिन्ह के रूप में वहाँ एक पन्ने को मोड़ देते हैं, जबकि एक साधारण मोटे धागे अथवा कागज के टुकड़े से यह काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। पुस्तकों में दिए गए चित्रों और रेखाचित्रों को ट्रेस पेपर की सहायता से अलग कागज पर बड़ी सुगमता से उतारा जा सकता है। उन्हें वहाँ फाड़ कर पुस्तक और अपनी नीयत बिगाड़ने की आदत की लज्जा इस पद और निंदनीय है।